जनवरी 1899, यह 14 वर्ष जो तपस्या की, यह बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो, विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही है, इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है, चाहे पदमपति भी है लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानियों का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं है। अब आप अपने बेहद के वैराग वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग वृत्ति से के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत नहीं बन सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ है, ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहां दिखाया है, जड़ में दिखाया है ना, तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। 18 जनवरी 1999, यह 14 वर्ष जो तपस्या की, कौन सा वायुमंडल था? यह बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग हो, विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि हद की इच्छाएं चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही, इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है, चाहे पदमपति भी है लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण है यह हद की इच्छाएं। अब आप अपने बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप सब कौन हो? वृक्ष की जड़। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहां दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना, तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है। दुख का और परेशानी का कारण क्या है? इच्छाएं, हद की इच्छाएं। और मुक्ति का मार्ग क्या है? बेहद का वैराग। तो बेहद की वैराग वृत्ति क्या करो, उसकी लहर फैलाओ। वैराग अर्थात राग अर्थात लगाओ, आसक्ति, अटैचमेंट। राग संस्कृत शब्द है, राग अर्थात रंग। कोई भी रंग में न रंगना, अनकलर्ड रहना, कोई भी कलर जिसको न टच हो, ऐसी बेरंग की अवस्था जहां कोई राग नहीं, कोई रंग नहीं, ऐसी अनकलर्ड स्टेट मन की वैराग है। तो वैराग अर्थात जहां कोई राग नहीं, जैसे प्रकाश है और अंधकार है, प्रकाश अंधकार अर्थात जहां प्रकाश का अभाव है, उसी तरह जहाँ राग का अभाव है, वह अवस्था वैराग है, वीतराग है। तो राग और द्वेष, एक है राग एक है द्वेष, इन दोनों से परे की जो अवस्था है, अट्रैक्शन रिपल्शन, आकर्षण विकर्षण, दोनों से ही परे की अवस्था जो है वो वैराग है। और उसमें भी बाबा कहते हैं बेहद का वैराग, हद का नहीं। तो राग वह अवस्था है जिसमें योगी का मन स्थिर हो जाता है। वैराग की अलग अलग स्टेजेस बताई है, अलग अलग प्रकार बताए हैं, अलग अलग प्रकार से चर्चा हुई है शास्त्रों में भी, और बाबा ने भी बहुत विस्तार से वैराग की चर्चा की है। एक है मंद वैराग, मंद वैराग से अध्यात्म में उन्नति नहीं हो सकती। दूसरा है तीव्र वैराग, और तीसरा है तीव्रतर वैराग। ऐसी तीन वैराग की अवस्थाएं बताई है। एक है मंद, मंद वैराग वह अवस्था है जिसमें दोनों ही चीजें हैं, भगवान तो चाहिए परंतु संसार भी उतना ही जोर से पकड़े हुए है, पुरुषार्थ तो करना है परंतु मन में आसक्ति और भर किए हुए है। तो वह मंद वैराग इतनी तेजी से उन्नति का साधन नहीं। उसके आगे है तीव्र वैराग, तीव्र वैराग में प्रयत्न है, जहां जहां मन भाग रहा है उसको खींच के वापस स्थिर करना। तीव्र वैराग में इंद्रिय विषय, इंद्रियों को वश में तो किया है परंतु मन में राग और द्वेष अभी भी छिपा हुआ है, और तीव्र वैराग। और तीसरा है तीव्रतर वैराग, उसमें मन भी स्थिर हो गया है, मन में इस संसार के किसी भी चीज का वस्तु का असर होना बंद हुआ है। यहाँ की चाहे कितनी भी आकर्षण करने वाली वस्तु है वह प्रभावित रहता है। तो वो तीसरा प्रकार वैराग के, और दो प्रकार के हैं, एक है अपरा और एक है परा। परा अर्थात सर्वोच्च, योगी की सर्वोच्च अवस्था, कोई भी रंग उसे उस पर प्रभाव नहीं डालता, किसी भी रंग से वो नहीं रंगता, वह परा वैराग की अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था। यहाँ का नाम, यहाँ का मान, यहाँ की वस्तुएं, यहाँ के व्यक्ति, यहाँ की धन संपत्ति टाइटल पोजीशन, कुछ भी नहीं। दूसरा है अपरा, एक है परा सुप्रीम, एक है अपरा। वो जैसे मंद वैराग है उसी कैटेगरी का अपरा वैराग है। वैराग के और दो प्रकार है, एक है क्षणिक वैराग, जिसको बाबा कहते हैं शमशानी वैराग या मरकट वैराग, थोड़े समय के लिए आने वाला वैराग। जब ज्ञानियों के संग में जाते हैं, योगियों के संग में जाते हैं, मधुबन में आते हैं, सत्संग में जाते हैं, उस तक थोड़ा वैराग आता है। मृत्यु को देखते हैं सजनों की, या फिर बीमारी को देखते हैं तब वैराग आता है, पर वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए। संसार को देखने के बाद फिर संसार के प्रति राग उत्पन्न होता है। जब तक वितरागियों का संग है तब तक वैराग, और जब तक भोगी विलासियों का संग है तो फिर से वही राग में व्यक्ति डूबता है। तो एक है क्षणिक वैराग, शमशानी वैराग, मरकट वैराग। मरकट अर्थात बंदर वाला, उसको पता है कि उसमें अगर हाथ डालेंगे मड़के में तो फंस जाएगा, और फंसता भी है, छड़ी डंडा भी मिलता है, परंतु अगली बार फिर विस्मृत हो जाता है। एमनेशिया, एमनेशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, भूल जाता है, वही एमनेशिया की स्टेट, और फिर से हाथ डालता है, चाहे फिर खाता है, फिर डंडा मिलता है, फिर हाथ बड़ी मुश्किल से निकलता है, फिर हाथ डालता है। गलतियों से न सीखना, ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स में एक नहीं है, दूसरा है। सात आठ गिनाए थे उसमें ये एडिशन, जो एक गलती की थी उससे न सीख के फिर से वही गलती करना। नॉट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, मिस्टेक्स से न सीखना, ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट है, तो ये उसमें एडिशन कर देना। तो शमशानी वैराग, और फिर दूसरा है शाश्वत वैराग, परमानेंट, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। महान आत्मा एक ही बार प्रतिज्ञा करती है, बार बार नहीं, एक ही बार, ओनली वंस। छोड़ा तो छोड़ दिया बस, फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं है, फिर चाहे कुछ भी हो पीछे, इधर या उधर, दो ऑप्शन है, दो विकल्प थे, संसार और भगवान, क्या चुना? एक बार इधर चुन लिया, अब जो कुछ होगा इधर देख लेंगे, फिर उसका संकल्प ही नहीं उधर क्या हो सकता था, वो ऑप्शन ही नहीं है। जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, दुविधा वाली, या इधर जाए या उधर जाए, टू बी नॉट टू बी, करे न करे, तब एक ऑप्शन पकड़ लिया, फिर दूसरा सोचो, दूसरा था ही नहीं, यही है, अब जो कुछ करना है इसी में करना है, नहीं तो लोग न इधर न उधर, दुविधा में दो गई, न माया मिली न राम, अधर में लटके हैं त्रिशंकु की तरह, अभी भी सोच रहे उधर अगर गए होते तो शायद शायद अवस्था कुछ और होती। मधुबन में आने से तो सेंटर ही ठीक था, ये भी चल रहा है किस किस के मन में। तो वैराग अर्थात एक बार प्रतिज्ञा कर ली और बस, फिर अभी इस पथ पर कुछ भी हो जाए, कुछ भी। टू वेज डाइवर्ज्ड इन द वुड्स एंड आई चोज द वन लेस ट्रेवल्ड एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। दो मार्ग थे जंगल में और मैंने वह मार्ग चुना जिस पर बहुत कम लोग चलते थे, और बस इसी एक बात ने सारा अंतर कर दिया है मुझ में और संसार में, क्योंकि वह मार्ग चुना है जिसमें भीड़ बहुत कम है। संसार के मार्ग में तो बहुत ट्रैफिक है, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, राम इंटरनेशनल हाईवे में, गलियों में और गलियारों में भीड़ होती है, लोग उधर से जाते हैं, ये तो इंटरनेशनल हाईवे है बड़ा, एनएच कितना 14 क्यों
माउंट अबू से कनेक्टेड 14
00 ट्रिपल जीरो। तो इंटरनेशनल हाईवे, तो महाभारत में दिखा भीष्म ने एक ही बात प्रतिज्ञा कर ली बस, कई सारी बार ऐसी बातें आएगी, प्रलोभन कहो या जो भी कहो, परिस्थितियां कहो, तोड़ने पर मजबूर की उसे, पर उसने नहीं तोड़ी अपनी प्रतिज्ञा, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा पुरुषार्थ के प्रति, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा, ऐसी घनघोर प्रतिज्ञा पवित्रता की, फिर अपवित्रता का वह मार्ग, वासनाओं का वह मार्ग, काम का वह मार्ग, इच्छाओं का वह मार्ग, हमारा मार्ग नहीं है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उसमें फिर कोई रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं, वैराग्य का पथ चुना है भगवान। जीवन साथी और कोई नहीं चाहिए। तो ऐसी प्रतिज्ञा तो एक है, शमशानी वैराग, मरकट वैराग, क्षणिक वैराग, और दूसरा है शाश्वत वैराग, निरंतर वैराग, परमानेंट वैराग। उसे वैराग नहीं कहेंगे, वैराग बहुत ही पावन और पवित्र शब्द है। वैराग की अलग अलग स्टेजेस बताई है, पांच स्टेजेस। पहली स्टेज वह स्टेज है कि जिसमें प्रयत्न है, मन भाग रहा है अभी विषय वस्तुओं की तरफ, उसे खींच खींच कर लाया जा रहा है, ये वैराग की पहली अवस्था है। मन भागता है फिर लाओ उसको, मन फिर भागता है फिर लाओ, यही खेल चल रहा है। दूसरी जो अवस्था है, जैसे उसमें भी कहा, वह अवस्था वह है कि जिसमें मन तो अस्थिर है परंतु इंद्रिया थोड़ी थोड़ी वश में हो गई है, इंद्रिया वश में हो गई है। हर एक अवस्था के लिए संस्कृत में कोई नाम भी है, जिसमें मन अभी भी अस्थिर है परंतु इंद्रिया, क्योंकि अभ्यास बहुत समय से किया है, मन तो वश में नहीं है परंतु इंद्रियों के ऊपर आदत के कारण, सतत अभ्यास के कारण बहुत हद तक कंट्रोल आ गया है। आंखों को ये पता है क्या करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना। कानों को ये समझ में आ गया है क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। मुख को ये पता चल गया ऐसी कौन सी बातें नहीं करनी है जो विराग को मन में जन्म देती है। मन में नहीं था, बोल दिया, उसके बाद में जन्म हुआ। कोई कोई ऐसी भी चीजें होती, पहले संकल्प फिर कर्म, पर कभी कभी होता है पहले कर्म और फिर संकल्प आते हैं। सीधा कर्म किए जाते हैं और फिर संकल्प को जन्म देते हैं, और संकल्प फिर बार 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 पुनरुक्ति और फिर संस्कार को जन्म देते हैं। उल्टा चक्र घूमता है, कर्म, बोल, संकल्प, संस्कार। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो कर्म बिना सोचे ऐसे ही कर दिया, क्योंकि सब कर रहे थे, तो वो कर्म रिपीट होते होते होते, बोल रिपीट होते होते होते, संकल्प और फिर संस्कारों का जन्म। इसके लिए यही विधि है संस्कारों से मुक्ति की भी। कई बार संकल्प करते हैं परंतु वो होते नहीं है। इसके लिए डायरेक्ट एक्शन, जो पता है करना चाहिए सीधा जबरदस्ती एक्शन कर लेना और फिर एक्शन रिपीट करते रहना, उसी के बारे में जबरदस्ती बोलते रहना, है नहीं वैराग पर बोलते रहना, वैराग की बातें करते रहना, तो उल्टा चक्र घूमेगा। कर्म, बोल, संकल्प, फिर संकल्प उत्पन्न होने चालू होंगे। जैसे कोई सोचे मैं 10 घंटा नहीं सोता है कोई, पर सोचे ट्राई करके देखते हैं 10 घंटे सोने का क्या होता है, जबरदस्ती 100 10 घंटे कर्म सीधा किया, फिर धीरे धीरे बोल कि कोई कहेगा हमको कम नींद की जरूरत है, उनको भी समझाएंगे शरीर में कुछ भी हो सकते हैं, ध्यान रखो, बैलेंस रखो। बैलेंस शब्द एडवाइस देने में ब्राह्मण सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कोई अगर मिल गया और थोड़ा सा कुछ करते हुए दिखा तो उसको पकड़ के सीधा बैलेंस का पाठ पढ़ाओ कि बैलेंस बहुत जरूरी है, इसमें खुशी भी होती है आंतरिक। सोचते हमने कुछ किया, कोई महान पुण्य का कार्य, किसी को श्रीमद सुनाना ये अपना परम कर्तव्य समझा जाता है। जैसे कोई भटक रहा था ब्राह्मण जीवन से, हमने उसे राह दिखा दी, कौन सी, बैलेंस वाली राह। तो 10 घंटा सोए तो फिर संकल्प और फिर धीरे धीरे वो संस्कार बन जाएगा और फिर उससे व्यक्ति नहीं छूटेगा, उल्टा चक्र घुमा है। तो जैसे ये हो सकता है वैसे ही जो चीज हमें करनी है, कभी कभी संकल्प ही करते नहीं बैठना है, सीधा एक्शन कर देना, संकल्प प्रतिज्ञा है, बाबा के सामने प्रतिज्ञा पे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ करेंगे क्यों करेंगे, ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, पर वो कुछ भी नहीं रहा है, प्रयत्न ही कर रहे, प्रतिज्ञा ही कर रहे हैं। ऐसे समय पर कभी कभी सीधा डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एनकाउंटर, डाकू को पकड़ेंगे, चोर को पकड़ेंगे, ये सब बहुत प्लानिंग कर ली, अभी सीधा धार रेड सर्जिकल स्ट्राइक करना है सीधा विकारों पर। तो तो दूसरी अवस्था ये है। तीसरी अवस्था है जिसमें मन भी स्थिर हो गया है, परंतु मन में थोड़ा थोड़ा कोने में राग और द्वेष है। इंद्रिय तो वश में हो गई है, मन भी वश में हो गया है, परंतु कभी कभी वो राग प्रकट होता है, वो द्वेष प्रकट हो जाता है। एक इंद्रिय अवस्था, इसका नाम एक इंद्रिय अवस्था है, ये बहुत ऊंची अवस्था है। अगली अवस्था जो है कितने हुए, तीन। फिर उसके आगे की जो अवस्था है वो जैसे वहां कहा परा, वैसी परा और बैराग की अवस्था, जिसमें यहां की कोई भी चीज प्रभावित ही नहीं करती, प्रभाव होना ही बंद हो गया है। ये और उसके आगे की थोड़ा थोड़ा अंतर बताया है सब अवस्थाओं में, परंतु अपने वैराग वृत्ति को बढ़ाना है। अब वैराग कैसे लाए, दूसरा प्रश्न ये है, वैराग को कैसे लाया जाए। वैराग को लाने से पहले राग के क्या कारण है वो ढूंढने पड़ेंगे, और उन पर सर्जिकल स्ट्राइक, उन पर आक्रमण करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटेड आक्रमण, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड जिसको कहते हैं, सुनियोजित, ऐसा सुनियोजित आक्रमण जिसमें फुल कोऑर्डिनेशन हो सबका मन बुद्धि संस्कार, ऐसा आक्रमण, क्योंकि राग ही दुखों को जन्म देता है। तो वैराग उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करें, वो मुरली की, मुरली में जो साकार और अव्यक्त में आती है उसको छोड़कर थोड़ा अलग भाषा में बताओ, पुरानी दुनिया देह सहित देव के सर्व संबंधों को भूल, ये छोड़कर। हाँ, दोष दृष्टि विधि है, दोष दृष्टि, दोष देखना राग में डूबे हुए व्यक्तियों के क्या हालत होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, दर्शन करना जन्म का, जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, व्याधि में दुख, बुढ़ापे में दुख, हर चीज में दुख है, जितना दुख समाया हुआ है, उन लोगों की स्टडी करना जो सांसारिक है और सांसारिक इच्छाओं में डूबे हैं। बाबा यहां कह रहे हैं हदों की इच्छाएं सभी दुखों का कारण है, जो राग में डूबे हैं, मोह में डूबे हैं। या अपने आप को ही देखना, जब मैं राग में डूबा था तो मेरी क्या अवस्था थी मन की, क्या वैराग तीव्र था, जब किसी व्यक्ति के राग में डूबे थे, फंसे थे देह में किसी के, गुणों में किसी के, प्रभाव में किसी के, तब चित्त की क्या अवस्था थी, दूसरों को छोड़ो स्वयं को ही। दोष दृष्टि, डिफेक्ट्स देखना, उसमें क्या क्या होता है साक्षी होके, वो दिखाए ना, शुभदेव भागने लगा जन्म होते ही, तुम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, जन्म हुआ और भागने लगा, उसको नहीं चाहिए संसार, जन्मते ही वैराग, चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ का खोज, सत्य की खोज, सत्यान्वेषण करने। तो दोष देखना, महात्मा बुद्ध ने दोष देखे तो वे राग आया, द्वारकरि ने दोष देखे तो वे राग आया। गोपीचंद कई सारे उदाहरण है। जब तक हम ये सोचते हैं मैं जो कुछ कर रहा हूं ये ठीक है, तब तक वैराग नहीं आता। जब ये पता चल जाए कि मैं ये जो कर रहा हूं ये ठीक नहीं है, तब वैराग आता है। और उससे नुकसान क्या क्या है, नेगेटिव चिंतन थोड़ा यहाँ चलाना होता है। दो मार्ग है वैराग के, एक तो है भगवान के प्रेम में ऐसे डूब जाओ कि संसार स्वतः ही छूट जाए, वो तो सबसे बड़ा मार्ग है। भोजन भवन भलो नहीं लागे, वो मीरा की अवस्था है, उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़े इस तरह से, वो प्रेम में ऐसी मगन थी कि उसे संसार छूट गया, कुछ भी अच्छा नहीं लगता यहाँ का। परंतु ये अवस्था इतनी आसान कईयों में करोड़ों में किसी एक को भक्ति में भी दिखाया है। दूसरा मार्ग है संसार के दोष देखना। संसार जिस मार्ग पर चल रहा है वो इच्छाओं का मार्ग, क्या हुआ क्या गति हुई है उनकी, उसका अध्ययन करना दोष का दूसरा मार्ग है। पहला तो ये, दूसरे मार्ग में भी पहला ये, दूसरा है वैरागियों का संघ, सत्संग, जहां ज्ञान की चर्चा हो रही है, जहां परमात्मा प्रेम की चर्चा हो रही है, जहां अध्ययन हो रहा है, जहां योगियों का संग है, तपस्वियों का संग है, तपस्या हो रही है, तपस्या का चिंतन चल रहा है, उनका संग करना तो भी मन में वैराग्य आएगा। क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं तब तक अध्यात्म में उन्नति हो ही नहीं सकती, चाहे कोई कुछ भी कर ले, सेवाएं चाहे जो करनी है करो, परंतु अध्यात्म में उन्नति के लिए वैराग्य चाहिए, दृढ़ता वैराग्य। सब कुछ ऊपर से कर रहे हैं परंतु अंदर से प्राण स्थिति है, यहाँ का कुछ नहीं चाहिए, ना किससे कुछ लेना देना है, कुछ नहीं। तो ऐसा वैराग लाना है अपने मन में, अपनी सेल्फ चेकिंग करनी है, किस राग ने मुझे पकड़ा है, किस आसक्ति ने, कौन से व्यक्ति ने। अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के दोष देखना है, फिर यहाँ गुणग्राही नहीं बनना है। अगर किसी में मोह है तो हम सोचते हैं उसके दोष कैसे देखें, उसमें तो इतने सारे गुण हैं, परंतु मुझे देखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आसक्त हूं। ये अनुरक्ति राग को उत्पन्न कर रही है, दोष देखने पड़ेंगे, दोष इस रीति से देखने पड़ेंगे, वो है तो मनुष्य कैसे भी हो, परंतु है तो मनुष्य, उसमें कितने भी गुण हो, दिए किसने हैं, दाता कौन है, चाहे कितना भी सहयोगी है, चाहे कितना भी स्नेही है, कुछ भी है, परंतु चाहे कैसा भी हो, परंतु एक पाठ जो यहाँ पढ़ाया गया है पहले दिन से, एक बाप दूसरा ना कोई, वन बट नन, उसमें तो हम फेल हो रहे हैं ना। फिर यदि कहा है सर्व संबंधी तेरे सम कौन है, एक ही से सर्व संबंध रखने हैं, तो ये तो फिर ये जो कनेक्शन है, ये जो रिलेशन है, शायद आज संबंध जो है वो हम आया है ब्राह्मण परिवार में। बाबा ने अलौकिक संबंध को भी पेपर कहा है, चौथी परीक्षा 1970 की मुरली, 18 जनवरी, चौथी परीक्षा कौन सी आएगी, अलौकिक संबंध के पेपर, इसी में पेपर आएंगे, तो इससे भी उपराम। तो ऐसा बेहद का वैराग अपने अंदर लाना है। ओम शांति।